चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 7 श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की भेंट। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। महाप्रभु के चरण कमलों से मधु को चाटने में लगे भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही एक पतितात्मा तक सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। अगले वर्ष बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए और महाप्रभु पहले की ही तरह उन सब से मिले। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते रहे। तब एक विद्वान पंडित जिनका नाम वल्लभ भट्ट था महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए। जब वल्लभ भट्ट आए तो उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार किया। महाप्रभु ने उन्हें महान भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए उनका आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने निकट बैठाया। तब वल्लभ भट्ट अत्यंत विनय पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, मैं बहुत समय से आपका दर्शन करना चाह रहा था। अब भगवान जगन्नाथ ने मेरी यह इच्छा पूरी की है, इसलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। जो आपका दर्शन पाता है वह सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्योंकि जो कोई आपका स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता है, इसलिए इसमें कौन सा आश्चर्य है कि आपका दर्शन करने पर कोई पवित्र हो जाए। महाप्रभु का स्मरण करने मात्र से सारा घर पवित्र हो जाता है, तो फिर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, उनके चरण कमलों का स्पर्श करने, उनका पाद प्रक्षालन करने या उन्हें आसन देने के विषय में क्या कहा जा सकता है। कलयुग में मूलभूत धार्मिक प्रणाली कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने की है। कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त किए बिना संकीर्तन आंदोलन का प्रसार कोई नहीं कर सकता। आपने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को प्रसारित किया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि आप कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने सारे जगत में कृष्ण नाम को उजागर किया है। जो भी आपको देखता है वह तुरंत कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाता है। कृष्ण द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण प्रेम उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण ही परमानंद प्रेम के एकमात्र दाता हैं। यही सारे प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। भगवान के कई सर्व मंगलकारी अवतार हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रिय वल्लभ भट्ट, आप विद्वान पंडित हो, कृपया मेरी बात सुनो, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, इसलिए कृष्ण भक्ति जानने का मेरे पास कोई अवसर नहीं है। फिर भी मेरा मन शुद्ध हो गया है, क्योंकि मैंने अद्वैत आचार्य की संगति की है, जो कि साक्षात भगवान हैं। उनका समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का ज्ञान तथा उनकी भगवान कृष्ण की भक्ति अद्वितीय है, इसीलिए वे अद्वैत आचार्य कहलाते हैं। वे इतने महान पुरुष हैं कि अपनी कृपा से मांसाहारियों मलेच्छों तक को कृष्ण भक्ति दिला सकते हैं, इसलिए उनकी वैष्णवता की शक्ति का अनुमान कौन लगा सकता है। नित्यानंद प्रभु अवधूत भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे प्रेमावेश के उन्माद में सदैव उन्मत रहते हैं। निसंदेह वे कृष्ण प्रेम के सागर हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य छह दार्शनिक मतों के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए वे दर्शन के छह मार्गों को सिखाने में जगत गुरु हैं। वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे भक्ति की सीमा दिखलाई है। एकमात्र उन्हीं की कृपा से मैं यह समझ सका हूँ कि कृष्ण की भक्ति ही समस्त योग का सार है। श्रील रामानंद राय कृष्ण भक्ति के दिव्य रस के आखिरी ज्ञाता हैं। उन्होंने मुझे उपदेश दिया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। रामानंद राय की कृपा से मैं समझ सका हूँ कि कृष्ण प्रेम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और कृष्ण का राधानुग प्रेम सर्वोच्च पूर्णता है। दास, मित्र, गुरुजन तथा प्रेमिका, ये दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार रसों के आश्रय हैं। भाव के दो प्रकार हैं। भगवान के पूर्ण ऐश्वर्यों के ज्ञान से युक्त भाव ऐश्वर्य ज्ञान युक्त कहलाता है और शुद्ध निष्कलुष भाव केवल कहलाता है। महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के ऐश्वर्य मात्र के ज्ञान से उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं की जा सकती। माता यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों के लिए सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, किंतु जो लोग मानसिक चिंतन ज्ञानी हैं, जो कठोर तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, या जो शरीर को आत्मा ही मानते हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं। आत्मभूत शब्द का अर्थ निजी संगी है। भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान द्वारा लक्ष्मी जी नंद महाराज के पुत्र की चरण प्राप्त नहीं कर पाई। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब भगवान की बाहें गोपियों की गर्दन का आलिंगन कर रही थी। यह दिव्य कृपा न तो कभी लक्ष्मी जी को न ही वैकुंठ में अन्य प्रेयसियों को प्राप्त हो पाई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक की सर्वोत्तम सुंदरियों ने भी, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्पों के समान होती है, कभी ऐसी कृपा की कल्पना नहीं की थी। तो फिर संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक अनुमान के अनुसार अत्यंत सुंदर कही जाती हैं। शुद्ध कृष्ण चेतना में कृष्ण का मित्र कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाता है और माता यशोदा कृष्ण को बांध देती हैं। शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान के ऐश्वर्यों के ज्ञान के बिना ही भक्त कृष्ण को अपना मित्र या पुत्र मानता है। इसलिए इस भक्ति भाव की प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी तथा व्यास देव जैसे महाजन भी करते हैं। जो लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति की प्रशंसा करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं तथा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हुए हैं अथवा जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे हुए हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष प्रचुर पुण्य कर्म संचित करके भगवान के साथ मैत्रीवश ग्वाल बालों के रूप में खेल रहे हैं। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को देखा तो वे कुछ समय के लिए निश्चय ही आश्चर्यचकित हो गई। जिस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है उसी प्रकार तीन वेदों के अनुयायी यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को समझने वाले संत निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड का वैश्लेषिक अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक पुरुष के रूप में उनकी उपासना करते हैं। महान योगी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में तथा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। फिर भी माता यशोदा भगवान को अपना पुत्र ही समझती थी। हे ब्राह्मण, नंद महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया तथा माता यशोदा ने कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे परम भगवान कृष्ण ने उन्हें माता कह कर पुकारा और उनके स्तनों का दूध पिया। यदि शुद्ध भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य को देखता भी है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए शुद्ध चेतना केवल भाव भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। रामानंद राय दिव्य रसों से बली भांति अवगत हैं। वे कृष्ण प्रेमावेश के सुख में निरंतर तन्मय रहते हैं। उन्हीं ने मुझे यह सब सिखाया है। रामानंद राय के प्रभाव तथा ज्ञान का वर्णन कर सकना असंभव है क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन वासियों के शुद्ध प्रेम को समझ सका। प्रेमावेश का दिव्य रस स्वरूप दामोदर द्वारा मूर्तिमान होता है। उनकी संगति से मैंने वृंदावन के दिव्य माधुर्य रस को समझा है। गोपियों तथा श्रीमती राधा रानी का शुद्ध प्रेम भौतिक काम वासना के लेश मात्र से रहित है। ऐसे दिव्य प्रेम की कसौटी यह है कि इसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को तुष्ट करना है। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम डरते डरते उन्हें अपने वक्ष स्थलों पर धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों को चोट न लग जाए। हमारे प्राण केवल आप पर आश्रित हैं। इसलिए हमारे मन इस बात से चिंतित हैं कि वन मार्ग में घूमते समय आपके चरण कहीं कंकरों से क्षत विक्षत न हो जाएं। ऐश्वर्य के ज्ञान से रहित शुद्ध प्रेम के वशीभूत गोपियां कभी कभी कृष्ण की वर्तना करती हैं। यह शुद्ध प्रेम का लक्षण है। हे प्रिय कृष्ण, हम गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों, परिवार, भाइयों तथा मित्रों के आदेश की अवहेलना की है और आपके पास आने के लिए उनका संग छोड़ा है। आप हमारी इच्छाओं के विषय में सब कुछ जानते हैं। हम आपकी वंशी के सर्वोत्कृष्ट संगीत से आकृष्ट होकर ही आई हैं, किंतु आप बहुत बड़े शठ निकले, क्योंकि इस रात्रि में ऐसा कौन होगा जो हम जैसी तरुणियों का साथ छोड़ देगा। गोपियों का माधुर्य प्रेम सर्वोच्च भक्ति है, जो भक्ति की अन्य सारी विधियों को पार कर जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, हे गोपियों, मैं तुम लोगों का ऋण नहीं उतार सकता। निसंदेह मैं तुम लोगों का सदैव ऋणी हूँ। हे गोपियों, मैं तुम लोगों की निष्कलंक सेवा के ऋण को ब्रह्मा की आयु तक में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का यह संबंध निंदा से परे है। तुम लोगों ने समस्त घरेलू संबंधों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। इसलिए तुम्हारे यशस्वी कार्य ही तुम्हारा पुरस्कार बने। शुद्ध कृष्ण प्रेम ऐश्वर्य में कृष्ण प्रेम से सर्वथा भिन्न होता है और सर्वोच्च पद पर होता है। इस पृथ्वी पर उद्धव से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। उद्धव गोपियों के चरण कमलों की धूली अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। मैंने स्वरूप दामोदर से भगवान कृष्ण के इन सारे दिव्य प्रेम व्यापारों के विषय में सीखा है। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य पारिवारिक जनों का साथ छोड़ दिया है, जिन्हें छोड़ पाना अत्यंत कठिन होता है, और उन्होंने वैदिक ज्ञान से खोजे जाने वाले मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए सतीत्व का मार्ग त्याग दिया है। ओह, यदि मैं वृंदावन की कोई झाड़ी, लता या औषधि बन जाऊं तो कितना भाग्यशाली होऊंगा, क्योंकि तब गोपियां इन्हें अपने पांव से रौंदती हुई अपने चरण कमलों की धूल से आशीर्वाद देंगी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर समस्त शुद्ध भक्तों में से सर्वाधिक पूज्य हैं। वे प्रतिदिन 3,00,000 पवित्र नामों का जप करते हैं। मैंने तो भगवान के पवित्र नाम की महिमा के विषय में हरिदास ठाकुर से सीखा है और उनकी कृपा से इस महिमा को जाना है। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, गदाधर पंडित, जगदानंद, दामोदर, शंकर, वक्रेश्वर, काशीश्वर, मुकुंद, वासुदेव, मुरारी तथा अन्य अनेक भक्तों ने कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा तथा कृष्ण के प्रति प्रेम के महत्व का जन जन में प्रचार करने हेतु बंगाल में अवतार लिया है। मैंने इन्हीं से कृष्ण भक्ति का अर्थ सीधा है। यह जानते हुए कि वल्लभ भट्ट का हृदय गर्वित है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द यह जताने के लिए कहे कि भक्ति के बारे में किस तरह सीखा जा सकता है। वल्लभ भट्ट सोच रहे थे, मैं महान वैष्णव हूँ, वैष्णव दर्शन के सारे सिद्धांतों को सीखने के बाद मैं श्रीमद् भागवत का अर्थ समझ सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। वल्लभ भट्ट के मन में ऐसा गर्व दीर्घ काल से चला आ रहा था, किंतु जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना तो उनका गर्व चूर चूर हो गया। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से इन सारे भक्तों की शुद्ध वैष्णवता के बारे में सुना तो तुरंत उनकी इच्छा उन सब के दर्शनों के लिए हुई। वल्लभ भट्ट ने कहा, ये सारे वैष्णव कहाँ रहते हैं और मैं उनका दर्शन किस तरह कर सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यद्यपि उनमें से कुछ बंगाल में और कुछ अन्य राज्यों में रहते हैं, किंतु वे सभी रथ यात्रा के दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। इस समय वे सब यहीं रह रहे हैं, उनके आवास विभिन्न स्थानों में हैं। यहीं आप उन सब के दर्शन कर सकोगे। तत्पश्चात अत्यंत विनय तथा दीनता पूर्वक वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। अगले दिन जब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए तो महाप्रभु ने उन सब से वल्लभ भट्ट का परिचय कराया। वे उनके मुख मंडलों के तेज को देखकर चकित थे। निसंदेह इन सब के बीच में वल्लभ भट्ट एक जुगनू समान लग रहे थे। तब वल्लभ भट्ट प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को अच्छी तरह से भोजन कराया। परमानंदपुरी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे सन्यासी संगी एक और बैठ गए और सबने प्रसाद प्राप्त किया। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के बीच बैठे। अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दोनों ओर बैठे। अन्य भक्त महाप्रभु के आगे और पीछे बैठे। बंगाल के सारे भक्त जिनकी गिनती करने में मैं असमर्थ हूँ आंगन में पंक्तियों में बैठ गए। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और भक्तिवश उन्होंने उनमें से हर एक के चरण कमलों पर नमस्कार निवेदन किया। स्वरूप दामोदर जगदानंद काशीश्वर तथा शंकर ने राघव तथा दामोदर पंडित को साथ लेकर प्रसाद वितरण का कार्यभार संभाला। वल्लभ भट्ट भगवान जगन्नाथ को अर्पित ढेर सारा प्रसाद ले आए थे। इस तरह सारे सन्यासी खाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ बैठ गए। प्रसाद पाकर सारे वैष्णवों ने हरि हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरि के पवित्र नाम की उठती ध्वनि ने सारे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। जब सारे वैष्णव खा चुके तो वल्लभ भट्ट बहुत सी मालाएं, चंदन लेप, मसाले तथा पान ले आए। उन्होंने सब भक्तों की आदर पूर्वक पूजा की और इस तरह अत्यंत सुखी हुए। रथ यात्रा के उत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया। पहले की ही तरह उन्होंने सारे भक्तों को 7 टोलियों में बांट दिया। अद्वैत नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर श्रीवास ठाकुर, राघव पंडित तथा गदाधर पंडित, इन 7 भक्तों ने 7 टोलियां बना ली और नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कीर्तन करते हुए 1 टोली से दूसरी टोली में विचरण करने लगे। उच्च संकीर्तन के साथ साथ 14 मृदंग गूंजने लगे। हर टोली का एक एक नर्तक था जिसके प्रेमाविष्ट नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड आप्लावित हो उठा। यह सब देखकर वल्लभ भट्ट पूर्णतया चकित थे। वे दिव्य आनंद से विह्वल और अपने में खोए हुए थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबका नृत्य रुकवा दिया और पहले की तरह वे स्वयं नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश का उदय देखकर वल्लभ भट्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निसंदेह ये भगवान कृष्ण हैं। इस तरह वल्लभ भट्ट ने रथ यात्रा उत्सव देखा। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से चकित थे। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद एक दिन वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर गए और उनके चरण कमलों पर एक विनती की। मैंने श्रीमद् भागवत पर कुछ टीका लिखी है, क्या कृपा करके आप इसे सुनेंगे? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं समझता। निसंदेह मैं उसका अर्थ सुनने का सुपात्र नहीं हूँ। मैं मात्र बैठकर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयत्न करता हूँ और यद्यपि मैं रात दिन नाम जप करता हूँ तो भी मैं नियत संख्या पूरी नहीं कर पाता। वल्लभ भट्ट ने कहा, मैंने कृष्ण के पवित्र नाम के अर्थ की विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया है, कृपया उस व्याख्या को सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण के पवित्र नाम के कई अलग अलग अर्थ स्वीकार नहीं करता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भगवान कृष्ण श्याम सुंदर तथा यशोदा नंदन हैं। बस मैं इतना ही जानता हूँ। कृष्ण के पवित्र नाम का एकमात्र तात्पर्य है कि वे तमाल वृक्ष की तरह गहरे नीले हैं और माता यशोदा के पुत्र हैं। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। मैं श्याम सुंदर तथा यशोदा नंदन इन्हीं दो नामों को निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं कोई अन्य अर्थ नहीं समझता, न ही उनको समझने की मुझ में क्षमता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, अतएव वे यह समझ गए कि वल्लभ भट्ट की कृष्ण के पवित्र नाम तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्याएं व्यर्थ हैं, अतएव उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्याएं सुनने से साफ मना कर दिया तो वल्लभ भट्ट खिन्न होकर अपने घर चले गए। महाप्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बदल गई। तत्पश्चात वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के घर गए। वे विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदर्शित करके आते जाते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखे। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरता पूर्वक ग्रहण नहीं किया, इसलिए जगन्नाथपुरी के किसी भी व्यक्ति ने उनकी कोई व्याख्या नहीं सुनी। लज्जित अपमानित तथा दुखित वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के पास गए। उनके पास अत्यंत विनीत भाव से पहुंचकर वल्लभ भट्ट ने कहा, मान्यवर, मैंने आपकी शरण ले रखी है, आप मुझ पर कृपालु हो और मेरे प्राणों की रक्षा करें। कृपा करके आप कृष्ण नाम के अर्थ की मेरी व्याख्या सुने। इससे मेरे ऊपर जो लज्जा का कीचड़ पड़ा है वह धुल सकेगा। इस तरह पंडित गोसाई संकट में पड़ गए। वे ऐसे संशय में थे कि उनके लिए यह निश्चित कर पाना कठिन हो गया कि वे क्या करें। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई सुनना नहीं चाहते थे, किंतु वल्लभ भट्ट अत्यंत बलपूर्वक से अपनी व्याख्या पढ़ने लगे। क्योंकि वल्लभ भट्ट विद्वान ब्राह्मण थे, अतएव गदाधर पंडित उन्हें रोक नहीं पाए। इस तरह उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, इस संकट में मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में विद्यमान हैं, अतः वे निश्चय ही मेरे मन की बात जान लेंगे, इसलिए मुझे उनसे भय नहीं है। किंतु उनके संगी अत्यंत आलोचना पटु हैं। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई का रंच भर भी दोष नहीं था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्तों ने उनके प्रति स्नेहमय रोष प्रकट किया। वल्लभ भट्ट प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आते और अद्वैत आचार्य तथा स्वरूप दामोदर जैसे महापुरुषों से व्यर्थ का तर्क करते थे। वल्लभ भट्ट उत्सुकता पूर्वक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत करते, उन सब का खंडन अद्वैत आचार्य जैसे भक्त कर देते। जब भी वल्लभ भट्ट अद्वैत आचार्य इत्यादि भक्तों की सभा में प्रवेश करते, वे श्वेत हंसों की सभा में बगुले जैसे प्रतीत होते। एक दिन वल्लभ भट्ट ने अद्वैत आचार्य से कहा, प्रत्येक जीव प्रकृति स्त्री है और वह कृष्ण को अपना पति मानता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति का नाम न ले, किंतु आप सब लोग तो कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, इसे किस तरह धर्म कहा जा सकता है। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आपके समक्ष धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। आप उनसे पूछो तो वे ही आपको सही उत्तर देंगे। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वल्लभ भट्ट, आप धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते। वास्तव में पतिव्रता स्त्री का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। कृष्ण की आज्ञा है कि उनके नाम का निरंतर कीर्तन हो, इसलिए जो स्त्री पति रूप कृष्ण के परायण है उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पति के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण का शुद्ध भक्त सदैव उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है। इसके फल स्वरूप उसे कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर वल्लभ भट्ट मूक हो गए। वे अत्यंत दुखी होकर घर लौट आए और इस तरह विचार करने लगे, मैं इस सभा में प्रतिदिन पराजित हो जाता हूँ। यदि कदाचित किसी दिन मैं विजयी हो जाऊं तो वह मेरे लिए सुख का महान स्रोत होगा और मेरी सारी लज्जा जाती रहेगी, किंतु अपने कथनों को स्थापित करने के लिए मैं किन साधनों को अपनाऊं? अगले दिन जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सभा में आए तो महाप्रभु को नमस्कार करके वे बैठ गए और बड़े ही गर्व से कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी श्रीमद् भागवत की टीका में श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया है, मैं उनकी व्याख्याओं को स्वीकार नहीं कर सकता। श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एक रूपता नहीं है और उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने स्वामी पति को अधिकारी नहीं मानता उसे मैं वेश्या समझता हूँ। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गंभीर हो गए। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों को यह कथन सुनकर अतीव संतोष हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत के लाभ हेतु अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह वे वल्लभ भट्ट के मन को भली भांति जान चुके थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक संकेतों तथा खंडनों के द्वारा वल्लभ भट्ट को उसी तरह सुधारा जिस तरह कृष्ण ने इंद्र के मिथ्या दर्प को खंडित किया था। अज्ञानी जीव अपना वास्तविक हित नहीं पहचान पाता। अज्ञानता तथा भौतिक गर्व के कारण वह कभी कभी हित को अहित मानता है, किंतु जब उसका गर्व चूर हो जाता है तब वह अपने वास्तविक हित को देख सकता है। उस रात घर लौटकर वल्लभ भट्ट ने सोचा, इसके पूर्व प्रयाग में श्री चैतन्य मुझ पर अत्यंत दयालु थे, उन्होंने अपने अन्य भक्तों सहित मेरा निमंत्रण स्वीकार किया था और वे मुझ पर अत्यंत कृपालु थे, यहाँ जगन्नाथपुरी में वे इतना अधिक क्यों बदल गए हैं? अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्वित होकर मैं सोच रहा हूँ, मुझे विजयी हो जाने दो, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को भंग करके मुझे शुद्ध बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है कि वे हर एक के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मैं अपने आप को विद्वान पंडित घोषित करके मिथ्या ही गर्वित हूँ, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को चूर करके मुझ पर कृपा करने के लिए मेरा अपमान करते हैं। वे वास्तव में मेरे हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, यद्यपि मैं उनके कार्यों को अपमान मानता हूँ। यह उसी घटना के तुल्य है जिसमें भगवान कृष्ण ने गर्वित महामूर्ख इंद्र को सही रास्ते पर लाने के लिए उसके गर्व को चूर किया था। इस तरह सोचकर दूसरे दिन प्रातः काल वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे और अत्यंत दीनता के साथ अनेक स्तुतियां करके उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। वल्लभ भट्ट ने स्वीकार किया, मैं महामूर्ख हूँ और निसंदेह आपके समक्ष अपना पांडित्य प्रदर्शित करने का प्रयास करके मैंने मूर्ख जैसा आचरण किया है। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपने मेरा अपमान करके मेरा समस्त मिथ्या गर्व चूर करने के लिए अपने पद के अनुकूल मुझ पर कृपा की है। मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ क्योंकि जो मेरे हित के लिए है उसे मैं अपमान मानता हूँ। इस प्रकार मैं राजा इंद्र के समान हूँ जिसने अज्ञानवश भगवान कृष्ण को मात कर देना चाहा था। हे प्रभु, आपने मेरी आंखों में अपनी कृपा का अंजन लगाकर मेरे मिथ्या गर्व के अंधेपन को दूर कर दिया है। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। हे प्रभु, मैंने अपराध किए हैं, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखकर आप मुझ पर कृपालु हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप बहुत बड़े पंडित तथा बहुत बड़े भक्त भी हो। जहाँ भी ऐसे दो गुण होते हैं वहाँ मिथ्या गर्व का पर्वत नहीं रह सकता। तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करने का दुस्साहस किया है और उनकी प्रामाणिकता को न स्वीकार करके श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका करनी शुरू की है। यही आपका मिथ्या गर्व है। श्रीधर स्वामी सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। अतएव मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ। श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हुए मिथ्या गर्व से आप चाहे जो भी लिखो उसका विपरीत तात्पर्य होगा, इसलिए उसकी और कोई भी ध्यान नहीं देगा। जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत पर टीका लिखता है उसका सभी लोग सम्मान करेंगे और वह सबके द्वारा मान्य होगी। आप श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करो। आप अपना मिथ्या गर्व त्याग दो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। अपने अपराधों को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। तब आप शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पा सकोगे। वल्लभ भट्ट आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो एक बार फिर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें। समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए अवतार लेने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को सुख प्रदान करने हेतु उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुखी देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इसलिए कभी कभी वे किसी किसी को दंड देते हैं जिससे वह अपने हृदय को शुद्ध कर सके। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को निमंत्रित किया तो महाप्रभु उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित का शुद्ध प्रेम भाव अत्यंत प्रगाढ़ था। इसकी तुलना सत्यभामा के प्रेम से की जा सकती है जो कृष्ण से सदैव जगड़ती रहती थी। जगदानंद पंडित में महाप्रभु से प्रेम पूर्ण झगड़ा करने की आदत थी। उन दोनों के बीच सदैव कुछ न कुछ खटपट चलती रहती थी। गदाधर पंडित का भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था। यह प्रेम रुक्मणी देवी जैसा था जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित का स्नेही क्रोध मान देखना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण वे कभी रुष्ट नहीं होते थे। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपरी रोष प्रकट करते थे। इस रोष को सुनकर गदाधर पंडित के हृदय में महान भय उत्पन्न हो जाता। पहले कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी देवी से परिहास किया था तब उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। वल्लभ भट्ट भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा किया करते थे, इसलिए उन्हें बाल गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली थी और वे इसी रूप में भगवान की पूजा करते थे। गदाधर पंडित की संगति से उनका मन बदल गया और उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा में अपने मन को समर्पित कर दिया। वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु गदाधर पंडित ने यह कह कर मना कर दिया, मेरे लिए गुरु के रूप में कार्य करना संभव नहीं है। मैं पूरी तरह से परतंत्र हूँ। मेरे प्रभु तो गौर चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। हे वल्लभ भट्ट, मेरे यहाँ आपका आना श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए कभी कभी वे मुझे दंडित करने के लिए बोलते रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गए और जब अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जगदानंद पंडित तथा गोविंद को गदाधर पंडित को बुलाने के लिए भेजा। रास्ते में स्वरूप दामोदर ने गदाधर पंडित से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है। तुमने पलट कर उनकी उलाहना क्यों नहीं की? तुमने डर कर उनकी आलोचना क्यों सह ली? गदाधर पंडित ने कहा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वे सर्वोच्च सर्वज्ञ पुरुष हैं। मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनके बराबर बनकर उनसे बात करता। वे जो भी कहते हैं उसे मैं शिरोधार्य करके सहन कर सकता हूँ। वे मेरे गुण तथा दोषों पर विचार करके स्वयं ही मुझ पर कृपालु होंगे। यह कहकर गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और रोते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। कुछ कुछ हंसते हुए महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उनसे मधुर वचन कहे जिससे अन्य लोग भी सुन सकें। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें उत्तेजित करना चाहता था किंतु तुम उत्तेजित नहीं हुए। निसंदेह क्रोध में तुमने कुछ नहीं कहा, प्रत्युत तुमने सब सह लिया। तुम्हारा मन मेरी युक्तियों से विचलित नहीं हुआ, प्रत्युत तुम अपनी सरलता में दृढ़ बने रहे। इस तरह तुमने मुझे खरीद लिया है। कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित की भाव भंगिमाओं तथा प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गदाधर प्राणनाथ अर्थात गदाधर पंडित के प्राण है। कोई कह नहीं सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित पर कितने कृपालु हैं, किंतु लोग महाप्रभु को गदाईर गौरांग अर्थात गदाधर पंडित के गौरांग महाप्रभु के रूप में जानते हैं। कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ नहीं सकता। वे गंगा के समान हैं, क्योंकि उनकी एक लीला से ही सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। गदाधर पंडित अपने सौम्य आचरण, अपने ब्राह्मण गुणों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने दृढ़ प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात हैं। महाप्रभु ने मिथ्या गर्व के कीचड़ को साफ करके वल्लभ भट्ट को शुद्ध किया। ऐसे कार्यों से महाप्रभु ने अन्यों को भी शिक्षा दी। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के भीतर सदैव कृपालु रहते, किंतु कभी कभी वे अपने भक्तों की बाह्य रूप से उपेक्षा करते थे। अतः हमें उनके बाह्य लक्षणों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध हैं, इन्हें कौन समझ सकता है? केवल वही इन लीलाओं को समझ सकता है जिसकी उनके चरण कमलों में दृढ़ एवं अगाध भक्ति होती है। अन्य दिन गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाया। महाप्रभु ने अपने संगियों सहित उनके घर पर भोजन किया। वहीं पर वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुमति ली और गदाधर पंडित से दीक्षा लेने की उनकी इच्छा पूरी हुई। इस तरह मैंने वल्लभ भट्ट से महाप्रभु की भेंट का वर्णन किया। इस घटना को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का धन प्राप्त हो सकता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्ण दास श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की वेद शीर्षक सातवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।